स्वागत है। आज हम कुछ खास दस्तावेजों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं।
हाँ, ये amnvatavaran.pdf नाम के अंश हैं।
बिल्कुल, और ये शांति कुंज उसके मकसद, वहाँ के माहौल पर रोशनी डालते हैं।
हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से शांति कुंज का असल उद्देश्य क्या है
और ये जो संस्थापक हैं, जिन्हें गुरु सत्ता कहा गया है, उनका क्या नजरिया था
और वो माहौल, मतलब वहाँ का वातावरण साधना के लिए कैसे मददगार है।
सही, तो हमारा लक्ष्य यही है कि इन दस्तावेजों से जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर सामने आए,
ताकि एक साफ तस्वीर मिले कि शांति कुंज क्यों बना, वहाँ का जीवन दर्शन क्या है।
चलिए शुरू करते हैं फिर ये चर्चा।
बिल्कुल,
तो सबसे पहले ये गुरु सत्ता कौन है? स्रोत कहते हैं कि वो खुद को कोई चमत्कारी संत या सिद्ध पुरुष नहीं मानते थे।
हाँ, ये दिलचस्प है। वो कहते थे कि उनके पेट से आग और आंखों से शोले निकलते हैं।
इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं होगा शायद?
नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये शायद उनकी परिवर्तन लाने की जो तीव्र इच्छा थी, उनकी ऊर्जा, उनके विचारों की जो तेजी थी, उसका प्रतीक है।
अच्छा,
जोर इस बात पर है कि भाई उनकी पूजा मत करो, उनके जीवन से सीखो, प्रेरणा लो,
उनके बताए रास्ते पे चलो, ऐसा।
हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि गायत्री मंत्र दीक्षा लेने का मतलब भी यही बताया गया है कि आप उनके जीवन को फॉलो करने का, अनुकरण करने का संकल्प ले रहे हैं।
ठीक है, तो फिर उनका रास्ता या उद्देश्य क्या था? स्रोत क्या कहते हैं?
उनका एक वाक्य आता है, हमारे जीवन से कुछ सीखें। और उद्देश्य बहुत बड़ा है, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण और फिर समाज निर्माण।
स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये तीन बातें भी आती हैं।
हाँ, और ये सब टिका है भारतीय दर्शन के मूल विचारों पर, जैसे आत्मवत सर्वभूतेषु,
यानी सबको अपने जैसा समझो,
और वसुधैव कुटुंबकम,
पूरी दुनिया एक परिवार है।
बिल्कुल, और इसमें किसी तरह का भेद नहीं, लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद, इन सबसे ऊपर उठकर सबके विकास की बात है।
उनका एक नारा भी काफी मशहूर है, हम बदलेंगे युग बदलेगा।
हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है कि बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, शुरुआत खुद से करनी होगी।
लेकिन ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है, इसे हासिल करने का तरीका क्या बताया गया है, मतलब व्यवहारिक रूप से?
स्रोत इशारा करते हैं प्रेम और आत्मीयता की तरफ, उसे ही असली उपासना कहा गया है।
उपासना मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं?
नहीं, बल्कि आपसी संबंध, एक दूसरे के प्रति भावनाएं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए शांति कुंज का जो माहौल है वो भी खास है।
हाँ, उसकी लोकेशन ही अपने आप में अद्भुत है, हरिद्वार में,
हिमालय की छाया में, गंगा के किनारे,
और कहते हैं सप्त ऋषियों और विश्वामित्र की तपोभूमि पर।
सही, और ये जो प्राकृतिक माहौल है उसे साधना के लिए और भी ऊर्जावान बनाया गया है, ऐसा स्रोत बताते हैं।
कैसे, क्या खास है वहाँ?
वहाँ एक अखंड दीप है जो हमेशा जलता रहता है, निरंतर गायत्री मंत्र का जाप चलता है, रोज यज्ञ होता है।
अच्छा,
कहा जाता है कि अब तक करोड़ों गायत्री मंत्र जाप और यज्ञ की आहुतियां वहाँ हो चुकी हैं, तो वो पूरी जगह जैसे यज्ञ ऊर्जा और मंत्र शक्ति से चार्ज्ड है, अभिमंत्रित है।
यानी वहाँ एक खास तरह की दिव्य प्राण ऊर्जा महसूस होती होगी।
हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं कि वहाँ वो ऊर्जा निरंतर मौजूद है जो साधना में मदद करती है।
तो ऐसे माहौल में फिर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है? क्या कोई तय दिनचर्या है?
हाँ, दिनचर्या काफी व्यवस्थित है। सुबह जल्दी जागने से, जिसे आत्मबोध कहा गया है, रात की प्रार्थना तक, जिसे तत्वबोध कहते हैं।
इसमें क्या क्या शामिल है?
बहुत कुछ, ध्यान, प्रार्थना, आरती, प्राणायाम, यज्ञ, जप, स्वाध्याय मतलब अच्छी किताबें पढ़ना, साथ में भोजन करना, श्रमदान यानी मिलजुल कर काम करना।
लेकिन क्या ये सिर्फ रूटीन काम है?
नहीं, हर गतिविधि का एक गहरा मतलब बताया गया है, जिसे प्राणायाम सिर्फ सांस का व्यायाम नहीं है।
तो क्या है
वो? ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को अपने अंदर खींचने का तरीका है। ध्यान का मकसद है खुद से पूछना, मैं कौन हूँ।
अच्छा, आत्मखोज।
हाँ, यज्ञ सिर्फ हवन नहीं, वो सामूहिक चेतना को जगाने के लिए। स्वाध्याय गुरु सत्ता के विचारों से जुड़ने, उनसे आत्मीयता बढ़ाने का माध्यम है।
और साथ में भोजन करना?
सहभोजन, वो आपसी अपनेपन को, आत्मीयता को और बढ़ाने के लिए।
एक परिवार वाली भावना।
तो हर काम एक तरह की साधना ही है। जीवन जीने के लिए कुछ खास सिद्धांत या सूत्र भी दिए गए हैं क्या?
हाँ, कई सूत्र हैं जिन्हें अपनाने पर जोर दिया गया है।
जैसे?
कुछ मुख्य बातें।
इनको कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आत्म अनुशासन, इसमें चार तरह के संयम की बात है।
चार संयम कौन कौन से?
इंद्रिय संयम, अर्थ संयम यानी पैसे का सही इस्तेमाल, समय संयम और विचार संयम।
विचारों पर संयम, ये बहुत गहरा है।
मतलब सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी अनुशासन भी। फिर चार गुण अपनाने की बात है।
गुण
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये नैतिक आधार हैं।
ठीक है।
और फिर आध्यात्मिक अभ्यास के तीन आधार बताए गए हैं, उपासना यानी ईश्वर से जुड़ना, साधना यानी खुद को बेहतर बनाना तराशना, और आराधना यानी सेवा करना।
उपासना, साधना, आराधना और तीन चीजें छोड़ने के लिए भी कही गई हैं शायद।
हाँ बिल्कुल, लोभ, मोह और अहंकार, इनको त्यागने की बात है।
तो मूल बात क्या है?
मूल बात है कि इन चीजों को सिर्फ जानना नहीं है, पहले सीखना है, फिर मानना है और फिर उसे अपने जीवन में उतारना है, अभ्यास में लाना है।
और समय के सही इस्तेमाल पर भी बहुत जोर है।
हाँ, समय, संयम, समय को बर्बाद ना करना बहुत जरूरी माना गया है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत शांति कुंज को सिर्फ एक जगह की तरह नहीं दिखाता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो एक पूरा दर्शन है, जीवन जीने का एक तरीका है, जहाँ व्यक्ति और समाज को बेहतर बनाने के लिए एक पूरी मतलब व्यवस्थित प्रणाली है।
सही कहा, ये सिर्फ जानकारी का पुलिंदा नहीं है, ये जीवन जीने का एक खाका प्रस्तुत करता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई एक सिद्धांत या कोई एक अभ्यास भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से उतार लें,
हाँ,
तो उसका क्या असर हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पर और शायद सामूहिक स्तर पर भी।
ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद ये सवाल ही अपने आप में गहरी खोज की तरफ पहला कदम हो सकता है।